హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం దూసరా స్కల్ అధ్యాయంలో శ్లోక సంఖ్య 36. ఇస్ ఆధ్యాత్మిక జగత్ మే ప్రవేశ కర్నే సే పహలే గురు ఆర్ గౌరంగ సే కృపా కీ యాచనా కర్తే హుయే మంగళాచరణ కరేంగే తాకి హమ్ జో అధ్యయన కర్ రహే హై ఉస్కా పూరా పూరా లాభ ప్రాప్త హో సకే జో కీ హై కృష్ణ ప్రేమ కీ ప్రాప్తి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో నమస్తే త్వరిషభాయ సాత్వతాం విదూరకాష్ఠాయముహుర్కుయోగినా నిరస్తసామ్యా దిశయేన రాధసా స్వధామని బ్రహ్మణీనస్యతే నమః. కీర్తనం యత్ స్మరణం యదీక్షణం యద్వందనం యత్ శ్రవణం యదర్హణం లోకస్య సత్యో విదునోతి కల్మషం తస్మై సుభద్ర శ్రవసే నమో నమః. కిరాత హోణ దపులింద పుల్కష ఆవీర శుంభ యవనాఖ సాయ యేనేచ పాప యదపాశయాశయా శుద్ధ్యంతి తస్మై ప్రభవిష్ణవే నమః. ప్రచోదితాయే నపురా సరస్వతీ వితన్వతాస్య సతిం స్మృతిం హృది స్వలక్షణా ప్రా దురభూత్కిలాస్యత సమీరిషీణాం ఋషభ ప్రసీదతాం భూతైర్మహద్భిర్ యఇమా పురో విభూ నిర్మాయ శీతి యదమూషు పురుష భుంక్తే గుణంశో దశ షోడశాత్మక సోలం కృషిష్ట భగవాన్ వసంసి మే. నమస్తస్మై భగవతే వాసుదేవాయ విధసే పపుర్జ్ఞానమయం సౌమ్యం యన్ముఖాంబురుహాసవం నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దైవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జాయాముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి యుత్తమ శ్లోకే భక్తిరభవతి నైష్టికీ. పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూప స్వరూపకం భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమామి భక్త శక్తికం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय नौ जिसका शीर्षक है श्री भगवान का के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर। आज भगवान ब्रह्मा जी को बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि एक जिज्ञासु को जो कि भगवान की खोज में लगा हुआ है उसे किस तरह से आचरण करना चाहिए, किस तरह से उसे अपने इस गोल की ओर डिटरमाइंड होना चाहिए। क्योंकि जब एक व्यक्ति भगवान की खोज में निकलता है तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, माया के बहुत सारे छलावे आते हैं, लेकिन फिर भी उसे अपने इस मकसद को प्राप्त करने के लिए कितना सिंसियर होना चाहिए, कितना सीरियस होना चाहिए, उसके विषय में भगवान बता रहे। वे कहते हैं एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञासम तत्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञासम। एतावत् अर्थात यहाँ तक, एव निश्चय ही, जिज्ञासम यानी पूछा जाना चाहिए, तत्व जिज्ञासु नात्मनः, तत्व मन परम सत्य, जिज्ञासुना अर्थात विद्यार्थी द्वारा आत्मना स्व का अन्वयति, अन्वय का मतलब होता है प्रत्यक्ष, व्यतिरेकाभ्याम मतलब अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यत यानी जो भी, स्यात यानी संभव है, सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र मतलब सभी जगह, तथा सर्वकाल में, सर्वदा मतलब समस्त परिस्थितियों में, जैसी सिचुएशन है जहां पर भी है, जो जगह है, जैसा काल है, हर जगह पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसे भगवान की खोज करने के लिए हर परिस्थिति में उसकी खोज करनी चाहिए। अनुवाद देखिए, जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। इस श्लोक को श्री प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से अपने तात्पर्य में समझाएंगे। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही बड़ा तात्पर्य लिखे हैं इस श्लोक का, क्योंकि यही हमारे जीवन का गोल है, हमें आखिर यही तो करना है। जीवन की सिर्फ एक ही सार्थकता है, जिज्ञासा, और जीव सदैव करता भी जिज्ञासा ही है ना। हम संसार में केवल जिज्ञासा ही तो कर रहे हैं। मनुष्य और जानवर में अगर कोई फर्क भी है ना, तो जिज्ञासा ही है, क्योंकि मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा संबंध किसके साथ है, क्यों दुख भोग रहा हूँ, किसने मुझे यहाँ भेजा, कारण क्या है, ये सारे क्वेश्चंस का जिज्ञासा करने का कभी ख्याल तक नहीं आया होगा किसी कुत्ते बिल्ली या सुअर के माइंड में, है ना। क्योंकि ये जिज्ञासा केवल मनुष्य कर सकता है, और ये कि मेरा स्रोत कौन है, मेरा गोल क्या है, मेरे आने का मकसद क्या है, ये केवल मनुष्य ही जान सकता है। इसी श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से, बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से हमें समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासाओं की परम अवस्था या उनका परम लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? केवल ये भक्ति योग के रहस्य को जानना, यही सबसे परम जिज्ञासा है, परम अवस्था है, परम लक्ष्य यही है, भक्ति योग को प्राप्त करना। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है, चाहे वह कर्म योग से हो, ज्ञान योग से हो, या ध्यान योग से हो, राजयोग से हो, अथवा भक्ति योग से हो। प्रत्येक चेतना युक्त जीव आत्मा का कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। तो हमारा कर्तव्य क्या है? आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चेतना युक्त जीव आत्मा का कर्तव्य है आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। मतलब हम जी रहे हैं उसका एक ही जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हम जी क्यों रहे हैं? केवल खाना पीना या पशुओं जैसे कार्य करना ही जीने का मकसद नहीं होता है, आत्म साक्षात्कार के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। तो जो चेतना में उन्नत है वह निश्चय ही आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में, यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, संस्कृत, धार्मिक, आचार संबंधी विषयों तथा उनकी विधि विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। किंतु यहाँ पर तो ऐसी समस्त जिज्ञासाओं के लक्ष्य को बताया गया। लक्ष्य क्या है? चाहे वो कोई भी जिज्ञासा कर रहा, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा मतलब जो वास्तविक जिज्ञासा है, यानी भगवत साक्षात्कार की, आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा। तो ये सब भले ही कोई को पूछता होगा पॉलिटिक्स के बारे में, समाज के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में, लेकिन वास्तविक लक्ष्य जो है वो भगवत प्राप्ति के विषय में, भगवत प्रेम के विषय में जानना है। वेदांत सूत्र दर्शन जीवन विषयक इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है और भागवत ऐसे समस्त जिज्ञासाओं का इस बिंदु तक अथवा समस्त जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दें, और यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर चार संक्षिप्त श्लोकों में अहमेव श्लोक से लेकर एताव देव तक है। तो ये चार श्लोक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चार श्लोकों में भगवान ने संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। ये चार श्लोक श्लोक नंबर 33 से स्टार्ट हुए हैं, जिसमें भगवान कहते हैं अहमेवासमेवाग्र नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्चादहम् यदि तच्च यो वशिष्येत सो सुस्मयहम्। यानी कि भगवान ने कहा हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, तब इस सृष्टि के कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ, जो प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। उसके बाद भगवान ने श्लोक नंबर 34 में बताया रितेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा बासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो भी सारयुग प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, इसे मेरी माया जानो और ऐसे प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। यथा महंति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम्। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। और आज श्लोक नंबर 36 में भगवान कहते हैं एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासु नात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप भगवान की खोज में लगा हो उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र तथा सर्वदा प्रत्येक या अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह से शिक्षित करते और यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर चार संक्षिप्त श्लोकों में अहम एव श्लोक से लेकर एतावदेत देव तक यही है और यही आत्म साक्षात्कार विद्यों का समापन है। अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य यह नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री भगवान विष्णु है। फलस्वरूप प्रत्येक प्राणी अन्यत्र इंद्रियों द्वारा घुमाया फिराया जाकर इस संसार के गहनतम अंधकार में धंसता जाता है। यही एक प्रॉब्लम है जीव की, क्योंकि अंधकार के कारण चकाचौंध, जब बहुत तेज अंधकार होता है और फिर जोर से कहीं से लाइट आती है ना, तो हम समझते हैं कि वाह ये तो सबसे सुंदर लाइट है और बहुत चकाचौंध हो जाते हैं, फिर उसी की ओर भागते हैं। ये नहीं सोचते कि वो तो एक है ना केट आई की तरह चमक रहा है, वास्तविक सुंदरता तो और कुछ है। लेकिन उसी तरह से संसार की माया जो है वो हमें किस तरह से भ्रमा रही है। संसार में कुछ सार युक्त नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे पाकर खुश होया जा सके, लेकिन जीव अपने इस इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए इतना अपने जीवन को नरर्थक बना देता है कि अपने वास्तविक जीवन के अर्थ को भूल जाता है। अब देखो इस संसार में कौन है जो आत्मा के कल्याण के लिए सोचता है, कौन है जो ये सोचता है कि मेरी आत्मा कितने करोड़ों जन्मों से भटक रही है उसको आनंद मिलना चाहिए। हर वक्त यही सोचते हैं कैसे शरीर को सुखी करें, कैसे अपने इस शरीर को इतना सुंदर बनाएं कि सबको हम अच्छे लगें। ये तब मन में नहीं आता कि शरीर तो कल जला दिया जाएगा, मेरी आत्मा को सुंदर बनाना है। मैं ये शरीर तो कल कुत्तों गिद्धों या कीड़ों के भोजन बन जाएगा या फिर अग्नि के स्पर्ट कर दिया जाएगा, तो इस शरीर के लिए इतना परिश्रम करना क्या अपने आत्मा के साथ अनजस्टिस नहीं है। लेकिन फिर भी कितना भी समझाया जाए जीव को बस यही समझ में आता है कि शरीर को सुख पहुंचाना एकमात्र कर्तव्य है मेरा। और इसीलिए श्री प्रभुपाद बोलते अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य यह नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री भगवान विष्णु है। फलस्वरूप प्रत्येक प्राणी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा घुमाया फिरा जाकर संसार के गहनतम अंधकार में धंसता जाता है। समग्र भौतिक संसार इंद्रिय तृप्ति मुख्यतः काम वासना पर आधारित कामनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है। फलस्वरूप ज्ञान की समस्त प्रगति के बावजूद समस्त जीवों का अंतिम लक्ष्य इंद्र तृप्ति ही रहता है। शिवपा जी बोल रहे दुख की बात यह है कि भले ही कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लीजिए लेकिन फिर भी उनको यही लगता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति काम वासना। जो कुछ भी है जीव इस संसार में प्राप्त करके केवल अपनी इच्छाओं को तो पूरा करता है और इच्छा को कभी आत्मा की नहीं होती है, वो तो मन में आती है और इंद्रियों को संतुष्ट करने की होती है, लेकिन इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती है। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि इंद्रियों को उनके विषय प्रदान करके आप संतुष्ट कर सकते हो। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि ज्ञान की समस्त प्रगति के बावजूद समस्त जीवों का अंतिम लक्ष्य इंद्र तृप्ति ही रहता है, किंतु यहाँ पर वास्तविक जीवन लक्ष्य बताया जा रहा है जिसे भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष प्रमाणिक गुरु या जीवित भगवत जीवन के जीवंत पुरुष समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार के धर्म संबंधी जिज्ञासा में लगा हुआ है, किंतु श्रीमद् भागवतम आत्म साक्षात्कार के समस्त जिज्ञासाओं का उत्तर प्रदान करने वाला है। जीवन का यह परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता। जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासाओं के से प्रेरित होता है, उससे चाहिए कि ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा के प्रमाणिक गुरु से पूछे। यही इस श्लोक में निर्देशित हुआ है। तो एक बहुत ही सुंदर बात है कि अगर हमारे पास सारा साधन है, जैसे किसी के पास मिट्टी है, पानी है, अग्नि है और आकाश है और वायु भी है, सारी वस्तुएं हैं, और उसको मटका बनाना है क्योंकि मटके के अंदर उसको अमृतमयी जल रखना है जिसे वो पीकर अपनी तृष्णा शांत करेगा। लेकिन ये सारी वस्तुएं, इन्हीं से मटका बनेगा, लेकिन ये सारी वस्तुएं आपके साथ पास हो और अगर कुम्हार न हो जो उस मटके को इस मटका बना के उसे इस योग्य बनाता है कि उसमें कुछ पात्रता हो, उसमें कुछ रखा जा सके, तो मटका नहीं बनेगा। कुम्हार आवश्यक है ना। उसी तरह से हमारे जीवन में सब कुछ हो, सुंदर शरीर हो, अच्छी बुद्धि हो, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी हो, साधन भी हो, लेकिन यदि एक प्रमाणिक गुरु न हो तो हमारा ये अस्तित्व ऐसा पात्र नहीं बन सकेगा जिसके अंदर भक्ति योग के अमृत को रखा जा सके। एक गुरु बहुत आवश्यक होता है। एक शुद्ध प्रमाणिक गुरु जो कि अपने को भगवान का दास समझता है, वही आपको भगवत दास्यता तक पहुंचा सकता है। जो भगवान की सेवा करता है, वही आपके वास्तविक लक्ष्य जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास तक पहुंचा सकता है। इसीलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत जोर देकर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासाओं के प्रति से प्रेरित होता है, उसे चाहिए कि ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा के प्रमाणिक गुरु से पूछे। यही इस श्लोक के निर्देशन है। और चूंकि भगवान ने इस रहस्य को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया था, अतः आत्म साक्षात्कार संबंधी सारी जिज्ञासाएं ऐसे गुरु के समक्ष प्रकट की जानी चाहिए जो शिष्य परंपरा के मान्य भगवान का सीधा प्रतिनिधित्व है। ऐसा प्रमाणिक गुरु शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारी बात को स्पष्ट करने में समर्थ होता है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी गुरु की क्वालिटी बता रहे हैं कि जो प्रमाणिक गुरु होता है, शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर, वो कभी अपनी बात नहीं कर मेरा ये मत है, नहीं, वो शास्त्रों का प्रमाण उसी के आधार पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारी बात को स्पष्ट करने में समर्थ। यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है, क्षमा कीजिए, यहाँ पर जो परीक्षित महाराज ने जो क्वेश्चन पूछे थे सुखदेव गोस्वामी से, उनका उत्तर सुखदेव गोस्वामी किससे ले रहे हैं? भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए कि भगवान ने किस तरह से ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। उसी तरह से जो प्रमाणिक गुरु होता है, वो कभी अपनी बात नहीं करता, वो हमेशा शिष्य परंपरा में जो प्रमाणिक गुरु होते हैं और जो शास्त्र होता है उसके प्रमाण के, गुरु शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर क्योंकि उसको पूरा ज्ञान होता है, गुरु बना है तो उसको सारा ज्ञान होना चाहिए, और फिर वो सारी बात को स्पष्ट करता है शास्त्रों के प्रमाण से। यदि भी प्रत्येक व्यक्ति को छूट है कि वह इस संबंध में शास्त्रों का अवलोकन करे, किंतु फिर भी उसे प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। इस अभी यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते सब लोग शास्त्र तो पढ़कर ये सब जान सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रमाणिक गुरु जो है वो ही हमें सही तरह से हर रहस्य को बता सकते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भव अर्जुन। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं शास्त्रों में जो कि हमारे समझ में नहीं आएंगी और भी उल्टा परिणाम निकलेगा, इसलिए एक शुद्ध वैष्णव गुरु जो है वो हमें सार सार समझा देता है, जिससे हम बहुत सरलता से अपने पथ की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इस श्लोक में यही आदेश है, प्रमाणिक गुरु भगवान का सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधि होता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु से उसी भाव से आदेश प्राप्त करे जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने श्री भगवान से प्राप्त किया था। इस शिष्य परंपरा में प्रमाणिक गुरु कभी भी अपने को भगवान नहीं समझता, यद्यपि ऐसा गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से भगवान को दूसरों को सौंप सकता है। भगवान को केवल शिक्षा या उर्वर मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से जिज्ञासु को उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान को प्राप्त करने का सरल तरीका है प्रमाणिक गुरु के शरण में जाकर उनके माध्यम से भगवत प्राप्ति की जाए। जैसे कोई वस्तु बहुत दूर होती है तो उसको देखने के लिए हमें हमें एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उसी तरह से गुरु जो है उसको भगवान जो है उसको परखने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है। अगर हमें प्रमाणिक गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा फिर हम कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे, भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकेंगे। भगवान की प्राप्ति तभी संभव है जब मैं किसी शुद्ध वैष्णव गुरु के निर्देशन में बैठकर हम उनकी सेवा करके भगवत प्राप्ति के लिए जिज्ञासा करेंगे, तभी वो गुरु महाराज जो है वो हमारी पात्रता के हमें अनुसार हमें आदेश देगा, जिसके और गुरु महाराज के आदेश को पूरा करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों में इसके सीधे निर्देशन प्राप्त हैं, किंतु जीवात्मा अंधकार में चकाचौंध के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण अंधी होने से शास्त्रों के सत्य को खोज पाने में असक्षम रहती है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भगवत गीता में सारा आदेश भगवान श्री कृष्ण ने की ओर से लक्षित है, किंतु ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रमाणिक गुरु के अभाव में अथवा अर्जुन जैसे प्रत्यक्ष श्रोता के अभाव में अनेक अवेद पुरुष अपनी सनकों की तुष्टि के लिए इस दिव्य ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। निस्संदेह परव्योम की क्षितिज में श्रीमद् भगवद गीता सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र है, किंतु इस महान ज्ञान ग्रंथ की व्याख्याएं इतनी बुरी तरह से तोड़ी मरोड़ी गई हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक जिज्ञासु भौतिक चमक दमक के अंधकार में कभी भी पड़ा हुआ अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसे जिज्ञासुओं को शायद ही श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाश ऐसे प्रकाश प्राप्त हुआ। अब यहाँ शिला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं निस्संदेह परव्योम के क्षितिज में श्रीमद् भगवत गीता सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र है, कि जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी ज्ञान की किताबें हैं, जितना भी अगर ये वैदिक साहित्य है उसमें श्रीमद् भगवत गीता सबसे उत्तम है, क्योंकि साक्षात भगवान ने सुनाई है। लेकिन फिर भी भगवत गीता के इस महान किंतु इस महान ज्ञान ग्रंथ की व्याख्या इतनी बुरी तरह से तोड़ी मरोड़ी गई है कि श्रीमद् भगवत गीता का प्रत्येक जिज्ञासु भौतिक चमक दमक के अंधकार में अभी भी पड़ा हुआ है। अब श्रीमद् भगवत गीता एक बार जो पढ़ ले उसके मन में क्या भौतिक चमक भौतिक वस्तुओं के आकर्षण बाकी रहना चाहिए, क्योंकि जिस भगवत गीता में भगवान ने ये बता दिया कि संसार में कुछ सार है ही नहीं, इस संसार में कुछ कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको प्राप्त करना है सिवाय भगवत प्राप्ति के। ये मनुष्य जीवन केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अगर एक बार श्रीमद् भगवत गीता समझ में आ जाए तो क्या जीवन में और कहीं कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे आकर्षण का केंद्र बने कृष्ण के अतिरिक्त। लेकिन भी संसार में हम देख रहे हैं, सब गीता पढ़ रहे हैं और संसार के चकाचौंध में गिरे हुए हैं। उसका कारण क्या है कि गीता को अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है ना। गीता बताते हैं लेकिन फिर भी उनको ये नहीं बताते कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम जन्म क्यों लिए हैं, क्यों संसार में दुख भोग रहे हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे जिज्ञासुओं को शायद ही श्रीमद् भगवत गीता से प्रकाश मिल पाता हो। गीता में मुख्य रूप से वही आदेश दिया गया है जो भागवत में इन चार मूल श्लोकों में प्राप्त है, किंतु अधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसकी गलत तथा फैशन परस्त व्याख्या से कोई सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। श्रीमद् भगवद गीता 18.61 में स्पष्ट कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठसि ब्राह्मयान सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदयों में स्थित है और अपनी भयंकर शक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं। अतः यह स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परम नियंता है और जीव आत्माएं भगवान द्वारा नियंत्रित है। उसी भगवत गीता में 18.65 में भगवान आदेश देते हैं, मन मनाव मद भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोजि में। इससे स्पष्ट है कि भगवान का आदेश है कि मनुष्य को भगवतोमुखी भगवान का भक्त उन्हीं का उपासक होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को ही नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त निस्संदेह भगवान के धाम को प्राप्त होगा। तो इतना स्पष्ट आदेश है भगवद गीता में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्यों हमें भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही यही है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ऐसे, जब भगवान ने खड़े होकर कह दिया कि आपके जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है और उसकी प्राप्ति इसी तरह से होगी जब कोई जीव भगवान की भक्ति करेगा, वो भी ना जाने कौन सी ऐसी तकलीफ है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा आकर्षण है संसार में कि जीव इतने स्पष्ट सुनने के बावजूद भी भगवान की ओर भागता नहीं है, भगवान की ओर आकर्षित होता नहीं, फिर भी ये माया उसे अपनी चुंगल में घेरे हुए है, या फिर भी वो इंद्रिय तृप्ति के ही साधन ढूंढता रहता है ना। क्लास का एक घंटा जब हम जाते हैं सत्संग में तब हमें लगता है थोड़ा बहुत कि आत्मा है, आत्मा के कल्याण के लिए, लेकिन बस वे एक घंटा ही क्या पर्याप्त है भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए यहाँ पे बोला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कंटिन्यूस भगवत प्राप्ति के लिए हमें जिज्ञासा करनी चाहिए और हृदय के अंदर एक उत्साह एक तड़प होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की। श्री प्रभुपाद जी बोलते अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा जाता है कि मानव समाज की संपूर्ण वैदिक संरचना इस प्रकार बनी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग के रूप में कार्य करता है। ज्ञानी पुरुष अर्थात ब्राह्मण भगवान के मुख पर स्थित है, शासक वर्ग अर्थात क्षत्रिय उनकी बाहों पर, व्यापारी वर्ग अर्थात वैश्य भगवान के कटी भाग पर, तथा श्रमिक वर्ग या शूद्र भगवान के पांवों पर स्थित है। अतः संपूर्ण सामाजिक ढांचा भगवान का शरीर है और शरीर के विविध भाग हैं, यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र सभी मिलकर भगवान के पूरे शरीर की सेवा करने के निमित्त हैं। अन्यथा ये बात एकता की परम चेतना में समन्वित किए जाने के योग्य नहीं रह जाता। श्री भगवान से संबंध सभी की समन्वित सेवा से विश्व चेतना प्राप्त की जा सकती है। अतः बड़े से बड़े वैज्ञानिक महान दार्शनिक चिंतक, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, समाज सुधारक इत्यादि तक भी इस संसार के अशांत समाज को कोई राहत नहीं दिला सकते, क्योंकि वे भागवत के इस श्लोक में वर्णित सफलता के रहस्य अर्थात भक्ति योग के रहस्य को नहीं जानते। श्रीमद् भगवत गीता 7.15 में भगवान कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबध्यन्ते नराधना माया पहित ज्ञान असुरम भावमाश्रित। क्योंकि मानव समाज में तथाकथित बड़े बड़े नेता भक्ति योग के इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भगवान की बहिरंग शक्ति से मोहग्रस्त होकर सदैव इंद्र तृप्ति के निकृष्ट कार्यों में संलग्न रहते हैं, अतः वे परमेश्वर के श्रेष्ठता के कट्टर विरोधी होते हैं और वे भगवान की शरण में जाना कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे मूर्ख, बदमाश तथा नराधम हैं। ऐसे श्रद्धा रहित नास्तिक चाहे उन्हें कितनी ही उच्च शिक्षा क्यों न प्राप्त हो, वास्तव में संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि बहिरंग प्रकृति के प्रभाव से उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। अतः सारा आधुनिक समुन्नत ज्ञान कुत्ते बिल्लियों के समान इंद्र तृप्ति के लिए आपस में लड़ने में लग जाता है और विज्ञान, दार्शनिक दर्शन, कला, राष्ट्रीयता, आर्थिक विकास, धर्म से धर्म के संबंध में अर्जित सारा ज्ञान तथा सारे महान कार्य उसी प्रकार व्यर्थ कर दिए जाते हैं जिस प्रकार शव के लिए प्रत्युक्त वस्त्र। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि अगर भगवत भक्ति की भावना नहीं है, भगवान की खोज नहीं है, हृदय के अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं है, तो चाहे कितना भी जीव शिक्षित क्यों न हो, कितना ही ज्यादा उसने ज्ञान अर्जित किया हो या संसार में बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त की हो, लेकिन फिर भी वो सारा ज्ञान तो केवल इंद्रिय तृप्ति के इर्द गिर्द घूमता है जो जानवर करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि विज्ञान, दर्शन, कला, राष्ट्रीयता, आर्थिक विकास, धर्म के संबंध में अर्जित सारा ज्ञान तथा सारे महान कार्य ये सब उसी प्रकार व्यर्थ कर दिए जाते हैं जिस प्रकार शव के लिए प्रत्युक्त वस्त्र के, शव को आप कितना ही फैंसी ड्रेस पहनाओ, श्रृंगार कराओ या फिर उसको बहुत सुंदर आभूषण ज्वेलरी पहनाओ, क्या फर्क पड़ता है उसको, है ना, क्या लाभ होता है उसको, क्योंकि वो तो शव है। उसी तरह से यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, शव शैया को विविध प्रकार के वस्त्रों से ढककर मूर्ख जनता से झूठी वाहवाही लूटने से कोई लाभ नहीं है। अतः श्रीमद् भागवतम बारंबार ये कहती है कि भक्ति योग का पद प्राप्त किए बिना मानव समाज के सारे कार्यकलाप निष्फल होते हैं। कहा गया है कि भागवतम के पांचवें अध्याय के पांचवें स्कंद के पांचवें श्लोक, पराभवस्ता वदबोध जातो यावन जिज्ञासत आत्म तत्त्वम यावत् क्रियास्ता वदिदं मनोवै कर्मात्मकं येन शरी प्रबंध। जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा की उपेक्षा करता है, तब तक बड़े से बड़े भौतिक कार्यकलाप पराजय स्वरूप होते हैं, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य इसे अवांछित तथा व्यर्थ के कार्यों से पूर्ण नहीं होता। मनुष्य शरीर का कार्य भवबंधन से मुक्त होना है, किंतु जब तक कोई भौतिक कार्यों में लीन रहेगा तब तक उसका मन पदार्थ की भंवर में घूमता रहेगा, वह जन्म जन्मांतर देह के बंधन में फंसता रहेगा। आगे कहते हैं, एवं मन कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्यात्मन्युपदीयमाने प्रतीर्णयावन मयि वासुदेवे namuchyate deha yoginata. 5.5.6. मन के ही कारण विविध देह धारण करके सभी प्रकार की भौतिक यातनाएं भोगनी होती हैं। अतः जब तक मन सकाम कर्म में लीन रहता है उसे अज्ञान में लगा हुआ समझना चाहिए। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। एवं मन कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्यात्मन मन्योपदीय माने। जब तक मन सकाम कर्म में लगा हुआ है कि ये करूंगा तो ये होगा, तो उसको कैसा समझना चाहिए? अज्ञान में लगा हुआ समझना चाहिए। अतः जब तक कि मनुष्य परम पुरुष भगवान वासुदेव के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक वह पुनः पुनः विभिन्न देहों में बहुबंधन में पड़ता रहेगा। परम पुरुष वासुदेव के दिव्य नाम गुण रूप तथा लीलाओं में मग्न रहने का अर्थ है मन की वृत्ति को पदार्थ से परम ज्ञान में बदल देना, जिससे परम बोध के पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है और इस प्रकार बहुबंधन तथा विभिन्न देहों के जाल से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पहले बता दिया कि जीवन का मकसद क्या है, भावबंधन से मुक्त होना। और मन में यदि भगवत भक्ति या भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त कोई और इच्छा है, कोई और सकाम वासना है, तो फिर वो तो हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसाएगी। इसीलिए जीव का एक ही कर्तव्य है, जब वो मनुष्य देह प्राप्त कर लेता है तब उसका सिर्फ एक ही कर्तव्य है, और वो क्या है कि भगवान के दिव्य नाम गुण लीलाओं में मग्न रहे, मन को पूरी ओर से, मन की वृत्ति को पदार्थ से परम ज्ञान में बदल देना, जिससे परम बोध के पथ का अग्रसर हुआ जा सके कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। मेरे जीवन में केवल एक ही बात महत्वपूर्ण है कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है बस, और ये यदि मन में इच्छा हो जाए तो बाकी सारी इच्छाएं, बाकी सारी बातें बहुत तुच्छ लगने लगती हैं। अतः श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद सर्वत्र सर्वदा शब्दों की टीका इस प्रकार इस अर्थ में करते हैं कि भक्ति योग के नियम सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। अर्थात भक्ति योग समस्त शास्त्रों में संस्तुत है कि समस्त अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त है। यह सभी स्थानों पर महत्व रखता है। यह समस्त कार्य कारणों में उपयोगी है इत्यादि। जहाँ तक सभी शास्त्रों का संबंध है, विस्कंद पुराण से ब्रह्मा तथा नारद की कथा का निमग्न उदाहरण देते हैं। संसारे स्मिन महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेवस्य तारकम वादि विस्मृतम। यह संसार अंधकार तथा भय के साथ साथ जन्म मरण तथा विभिन्न चिंताओं से पूर्ण है, और इस विशाल जाल से निकलने का एकमात्र उपाय भगवान वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति को स्वीकार करना है। सभी वर्ग के दार्शनिकों ने इसको स्वीकार किया है। कितना महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता रहे हैं कि संसार क्या है, अंधकार तथा भय के साथ साथ जन्म मरण तथा विभिन्न चिंताओं से पूर्ण है। कितने जीव हैं संसार में, कोई एक ऐसा है जो भय से मुक्त हो, कोई ऐसा है जो दुख से मुक्त हो, कोई ऐसा है जो चिंता से मुक्त हो, चाहे कुछ भी प्राप्त कर लिया जाए इस संसार में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और दोष तो सदैव रहते हैं। तो यदि इनसे बचना है और इस विशाल जाल से निकलने का केवल एकमात्र तरीका क्या बताया गया, पूजनम वासुदेवस्य तारकम वादि विस्मृतम, कि वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति को स्वीकार करना है। और हर किसी ने इस बात को, श्रीलाल जीव गोस्वामी एक अन्य व्यापक उदाहरण देते हैं जो पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा लिंग पुराण इन तीनों में पाया जाता है। इस प्रकार है कि आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम् एकम् सुनिष्पन्नम् ध्येयो नारायण सदा, आलोड्य सर्व शास्त्राणि, जितने भी शास्त्र हैं उनको आलोडन किया जाए, मतलब शास्त्रों के आलोडन तथा उनको बारंबार पुनरीक्षण के से निष्कर्ष क्या निकलता है, विचार या पुनः पुनः बार बार पढ़ने से विचार करने से क्या निष्कर्ष निकलता है, इदम एकम सुनिष्पन्नम कि भगवान नारायण, नारायण सदा देयो नारायण सदा, कि भगवान नारायण ही परम सत्य है अतः केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, यही सत्य अप्रत्यक्ष रूप में गरुड़ पुराण में इस प्रकार बताया गया है। पारंगतोपि वेदानां सर्वशास्त्रार्थ वेद्यपि यो न सर्वेश्वर भक्त तम विद्यात् पुरुषाधमम्। भले ही कोई समस्त वेदों का अवगाहन कर चुका हो, पारंगतोपि वेदानां, चाहे कितने अच्छे तरीके से सारे वेदों को पढ़ लिया हो और सर्व शास्त्रार्थ वेद्यपि और समस्त शास्त्रों में निपुण हो, जानता हो, योन सर्वेश्वरे भक्तः, किंतु यदि वे भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है, परमेश्वर का भक्त नहीं है, तो तम विद्यात् पुरुषाधमम्, तो उसे नराधम समझना चाहिए। और उसके अंदर कितनी भी क्वालिटीज हो, कितना भी ज्ञान हो, कितना ही उसने वेदों को कंठस्थ क्यों ना कर लिया हो, भक्ति नहीं है तो क्या है, साफ साफ बताया गया पुरुषाधमम, वो अधम है। और श्रीमद् भागवतम 5.18.15 में भी अपरोक्ष रीति से कहा गया है, यस्यास्ति भक्ते भगवत्य किंचना सर्वै गुण तत्र समासते सुरा, हराव भक्तस्य कुतो महत्गुणा, मनोरथे नास्ति धावतु भी, कि जिसमें भगवान के प्रति अटल भक्ति है उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण रहते हैं, सर्वै गुणैस्त तत्र समासते सुरा, किंतु हराव भक्त से कुतो महत्गुणा, जिसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है किंतु उसके विपरीत जो भगवान का भक्त नहीं है, कुतो महत्गुणा, वह कल्पना यानी चिंतन के अंधकार में भटकता रहता है, मनोरथे नास्ति धावतो वही, बाहरी चीजों में, क्योंकि भगवान की भक्ति तो है नहीं, तो बाहर से वो आनंद प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ कामना और लालच करता रहता है, तो ऐसा और नाशवान भौतिकता में लगा रहता है तो उसके अंदर महत्वपूर्ण कहाँ से आ सकता है। श्रीमद् भागवतम 11.11.18 में कथन है कि शब्द ब्राह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि शमस्तस्य शमफलो यधेनोमिव रक्षत। शब्द ब्राह्मणि निष्णातो, मतलब भले ही कोई वेदों में समस्त दिव्य साहित्यों में निष्णात हो, न निष्णयात परे यदि, किंतु यदि वह परमेश्वर को नहीं जानता, वेद समझ लिए, सारे शास्त्र अध्ययन कर लिए, भगवान को नहीं समझ पाया, तो यह समझना कैसा है, श्रम तस्य श्रम फलो, ऐसा है जैसे कोई गदा हो उसके ऊपर चंदन की लकड़ी का भार रख दिया गया हो। अभी चंदन चाहे कितना ही महत्वपूर्ण, उसको गधे को क्या पता कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसको तो वो साधारण लकड़ी देगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उसकी सारी शिक्षा पशु का भार उठाने तुल्य है, कि वो शिक्षा केवल जिस तरह जानवर, क्योंकि उस शिक्षा का जो वास्तविक लक्ष्य है वो तो वो जान ही नहीं पा रहा, और दूध न देने वाली गाय के पालने का सामान है कि कोई लाभ नहीं है उसका। उसी प्रकार भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने की छूट प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक स्त्री, शूद्र, अन्य व अन्य जातियों या अन्य किसी भी पापमय स्थितियों में जी रहे जीवों के लिए भी है। इसीलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय के श्लोक नंबर 36 में जो कथन है उसके विषय में बताए, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वे कहते हैं, देव वेदन्त्यति तरन्ति च देव माया त्रिषु द्रहोण शबर अपि पाप जीवा यद्यद्भुत क्रम परायण शील शिक्षात् ते यज्जन अपि किमु श्रुत धारणाये। अर्थात यदि भगवान में निष्णांत प्रामाणिक गुरु द्वारा नराधमों को भी शिक्षा मिले तो वे भक्ति के उच्चस्त पद तक उठ सकते हैं। भक्ति प्राप्त करने के लिए जो सरल मार्ग है वो क्या है कि किसी शुद्ध भक्त का, किसी शुद्ध प्रामाणिक गुरु का आश्रय प्राप्त हो जाए, उनसे शिक्षा प्राप्त हो जाए। तो जब नराधम तक इतने ऊंचे उठ सकते हैं तो जो वैदिक ज्ञान में निष्णांत सर्वोच्च हैं, उनके विषय में कुछ कहना ही क्या है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवत भक्ति के द्वारा सबों के लिए द्वार सबों के लिए खुले हैं, चाहे वे जो भी हों। यह सब प्रकार के लोगों द्वारा भक्ति से लाभ उठाए जाने की पुष्टि है। अतः हर एक के लिए, यहाँ तक कि यदि वह मनुष्य ना हो तो भी प्रामाणिक गुरु की शिक्षा द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान सहित भगवान की भक्ति की सलाह दी गई है। गरुड़ पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई कीट पक्षी मृगाणां च अरौ संन्यस्त चेतसाम् ऊर्ध्वामेव गतिं मन्ये किं पुनर्ज्ञानिनां नृणां। कीट पक्षिणां मृगाणां, कीट यहाँ कीटों यानी जो कीड़े हैं, पक्षिणाम यानी पंछियों तथा मृगाण यानी पशुओं तक को हरो संन्यस्त चेतसाम भगवान की दिव्य भक्ति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने पर उच्चतम सिद्धि पद ऊपर पद तक ऊपर उठने का आश्वासन प्राप्त हो। वहां पर ऊर्ध्वमेवा गति मन्ये, उनको तो ऊर्ध्व मिलेगा, चाहे वो ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी, चाहे वो कीट हो, पक्षी हो या पशु हो। फिर किम पुनर्ज्ञानी नाम निर्णय, वहाँ मनुष्यों में ज्ञानियों के विषय में क्या कहा जाए। अतः भगवान की भक्तिमयी सेवा करने के लिए समुचित योग्य पात्रों की के ढूंढे जाने की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वे विशिष्ट हो या अशिक्षित, विद्वान हो अथवा मूर्ख, आसक्त हो या विरक्त, मुक्त हो या मुक्ति के कामी, भक्ति करने में सक्षम हो या अक्षम हो। सभी लोग उचित पथ प्रदर्शन से भक्ति करते हुए परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 9.32 में इस प्रकार हुई है। अपिचे सुदुराचारो भजते मामनन्य भा साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः माम हि पार्थ व्यपाशित्य ये पिस्युः पापयोनयः स्त्रियो वैशा तथा शूद्रा ते पियान्ति परां गतिम्। यदि समस्त प्रकार के पाप कर्मों में रत कोई व्यक्ति उचित पथ निर्देशन में भगवान की भक्ति करता है तो उसे निसंदेह परम पवित्र पूर्ण पुरुषोत्तम समझना चाहिए, सॉरी पूर्ण पुरुष समझना चाहिए। अतः कोई भी पुरुष या स्त्री, चाहे वह जो भी हो और जैसा भी हो, यहाँ तक कि पतित स्त्री, शूद्र, वैश्य या उनसे भी निम्न पुरुष, यदि भगवान के चरण कमलों की निष्ठा पूर्वक शरण ग्रहण करता है तो वह भगवान के धाम को लौटकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यही निष्ठा एकमात्र पात्रता है। क्या निष्ठा चाहिए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है और उसके लिए भगवान के चरण कमलों की निष्ठा पूर्वक शरण ग्रहण करनी है। बस इतना ही करना है कि कृष्ण मुझे संसार नहीं तुम चाहिए हो, फिर उसके लिए पूरी व्यवस्था भगवान स्वयं करेंगे। लेकिन ये निष्ठा ही पात्रता है, निष्ठा ही योग्यता है, ये निष्ठा ही तो नहीं बना पा रहे हैं। अभी तक जब भगवान के सामने जाते हैं तब यही तो याद आता है कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, है ना, घर में ये दुख है उसको दूर कर दो, बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम है वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बस यही तो चाहते हैं भगवान से। है ना, भगवान के पास जाकर जब हृदय से ये आवाज निकले ना, कृष्ण ये शरीर को चलाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो तो मुझे मेरे भाग्य से मिल जाएंगी, उसके लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है, मेरी आत्मा को जो कि जन्म जन्मांतर से तुम्हें प्राप्त किए बगैर इस संसार में भटक रही है, उस आत्मा को तुम तक पहुंचाने का कोई साधन दे दो बस। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं एक के भगवान के दाम को लौट कर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, यही निष्ठा एकमात्र पात्रता है जिससे वह जीवन के उच्च पूर्ण पद को प्राप्त कर सकता है। और जब तक ऐसी निष्ठा जागृत नहीं होती है तब तक भौतिक दृष्टि से शुद्ध अथवा अशुद्ध, ज्ञान अथवा अज्ञान में अंतर दिखता है। अग्नि तो सदैव अग्नि रहती है, अतः जब कोई जाने या अनजाने अग्नि को छूता है तो अग्नि बिना भेदभाव के अपना कार्य करती है। नियम है हरे हरति पापानि दुष्ट चेतय अपि स्मृतम्। सर्वशक्तिमान भगवान भक्त के सभी प्रकार के समस्त पाप फलों को शुद्ध कर सकता है। हरि हरति पापानि और दुष्ट चेतय अपि स्मृतम्। जिस प्रकार सूर्य अपनी शक्तिशाली किरणों से सभी प्रकार के संदूषण को संदमित कर देता है, भगवान के शुद्ध भक्त पर भौतिक सुख के आकर्षण का रंग नहीं चढ़ता। शास्त्रों में सैकड़ों हजारों ऐसी सूक्तियां हैं। आत्म रामस्य मुनयः, स्वरूप सिद्ध पुरुष भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। केचित केवलया भक्ति वासुदेवय परायणः, केवल श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य भगवान वासुदेव का परम भक्त बन जाता है। न चलति भगवत पदारविंद विंदाल विनिमिषाण धर्म अपि सह वैश्वाग्रयः। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी नहीं हटता उसे समस्त वैष्णवों में सबसे बड़ा समझा जाता है। किसको? जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी नहीं हटता। इसका मतलब ये नहीं सारा दिन मंदिर में खड़ा, मतलब वो क्या करता है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, है ना। जैसे गोपियां क्या घर का काम नहीं करती थी, घर का काम करती थी, वो आज के हमारे काम से तो बहुत ज्यादा करती थी। सुबह उठती थी, गौओं को धोती थी, लेपन करती थी, गौरस निकालती थी, बेचने जाती थी, लेकिन कुछ भी करती थी, उनका मन जो था वो सदैव कृष्ण के चरणों में लगा होता था, तो वो कभी नहीं हटता था। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी नहीं हटता है उसे समस्त वैष्णवों में सबसे बड़ा समझना चाहिए। भगवत पार्षदताम प्राप्ते मत सेवा प्रतीतते, शुद्ध भक्तों को भगवान की संगति प्राप्त करने का पूरा पूरा विश्वास रहता है और इस तरह वे भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, अतः समस्त भूखंडों लोकों तथा ब्रह्मांडों में भक्ति योग प्रचलित है, यही श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों का कथन है। सर्वत्र का अर्थ है भगवान की सृष्टि के प्रत्येक भाग में भगवान की सेवा समस्त इंद्रियों से या मन से की जा सकती है। दक्षिणी भारत में जिस ब्राह्मण ने केवल अपने मन के बल पर भगवान की सेवा की थी उसे यथार्थ में भगवान के दर्शन हुए। जो भक्त अपनी किसी भी इंद्रिय को पूर्णतः भगवत गुण में लगाता है उसकी सफलता निश्चित है। भगवान की सेवा किसी भी वस्तु से, यहाँ तक कि सर्व साधारण वस्तु जैसे फल, फूल, पत्ती या थोड़ी सी जल द्वारा, जो संसार भर में सर्वत्र बिना मूल्य के ही उपलब्ध है, उससे भी की जा सकती है। भगवान ब्रह्मांड भर के जीवों द्वारा उसी प्रकार सेवित है। केवल श्रवण कीर्तन या उनकी लीलाओं के पठन से, पूजन से या उन्हें मानने से ही उनकी सेवा हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य स्वकीय कर्मों के फल अर्पण करने से भी भगवान की सेवा कर सकता है। स्वकीय मतलब अपने लिए किया भले उसने, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं यत करुषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि, तुम जो करते हो, जो ये आगे आएगा, आगे लिखा हुआ है, तो उसमें स्वकीय कर्मों की को भी भगवान को अर्पण करने से भगवान की सेवा कर सकता। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वह क्या करता क्या है। सामान्य रूप से लोग कह सकते हैं कि वे जो भी करते हैं वह ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं, किंतु यही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को वास्तव में भगवान के सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 9.27 में भगवान कहते हैं यत करुषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मद अर्पणम्। जो तुम्हें अच्छा लगे या आसान लगे वही करो, जो चाहो सो खाओ, जो भी यज्ञ करना हो सो करो, जो भी दान देना हो दो, और जो भी तपस्या करनी हो आप करो, किंतु प्रत्येक कार्य केवल भगवान के लिए होना चाहिए। यदि तुम कोई भी कार्य करते हो या कोई नौकरी स्वीकार करते हो तो भगवान के हेतु करो, जो भी खाओ वही भगवान को भी अर्पित करो, और आश्वस्त रहो कि वे इस भोजन को पाने के बाद तुम्हें लौटा देंगे। वे परम पूर्ण है, अतः जो भी भक्ति भक्त द्वारा अर्पित किया जाता है वे उसे भक्त के प्रेम वश ग्रहण करते हैं, किंतु पुनः प्रसाद के रूप में भक्त को लौटा देते हैं, जिसे खाकर वह प्रसन्न रहे। दूसरे शब्दों में ईश्वर के सेवक बनो और उसी भाव में शांति पूर्वक रहकर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करो। स्कंद पुराण में कहा गया है यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनं संपूर्णतामेति सद्यो वंदे तमुच्यतम। मैं अच्युत भगवान को नमस्कार करता हूँ क्योंकि केवल उनके पवित्र नाम के उच्चारण या स्मरण से समस्त तपो, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु, समस्त तपो सकाम कर्म यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कितना कितना महत्वपूर्ण है ये बात कि केवल भगवान का नाम स्मरण करने से, नाम को उच्चारण करने से क्या प्राप्त होता है। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु, सारी तपस्याओं का, सकाम कर्मों का, यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। नूनम संपूर्णतामेति सद्यो वंदे तमुच्यतम, और इस विधि का सर्वत्र पालन किया जा सकता है। कभी भी कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर नाम उच्चारण नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भागवतम 2.3.10 में भी कहा गया है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण सिद्धि के लिए अच्युत भक्ति योग पथ का अनुसरण करे, भले ही वह सकाम हो अथवा निष्काम हो। मनुष्य को प्रत्येक देव या देवी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भगवान उन सबों के मूल रूप है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों को सींचने से उसकी समस्त टहनियां तथा पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से अन्य सभी देवों तथा देवियों की सेवा बनी बिना किसी प्रयास के हो जाती है। भगवान सर्वव्यापी है अतः उनकी सेवा भी सर्वव्यापी है। इस तथ्य का समर्थन स्कंद पुराण में इस प्रकार हुआ है अर्षिते देव देवेशे शंख चक्रा गदाधरे अर्चिता सर्व देवास्यो यतः सर्वगतो हरि। अर्चिते सर्व देव देवेश यानी शंख चक्र गदा धरे, जब शंख चक्र गदा तथा पद्म धारी श्री भगवान की पूजा की जाती है तो अन्य सभी देवों की पूजा स्वतः हो जाती है। अर्चिते देव देवेश, और उसके बाद क्योंकि श्री भगवान हरि सर्वव्यापी है, अर्चिता सर्व देवा, अतः सभी प्रकार से प्रत्येक प्राणी ऐसी भगवत भक्ति से लाभान्वित होता है। ऐसे कार्य से भगवान की पूजा करने वाला, पूजित होने वाले भगवान जिस हेतु पूजा की जाती है, पूर्ति का स्रोत जहाँ पूजा की जाती है, ये सभी लाभान्वित होते हैं। मतलब खाली भगवान की पूजा करने से क्या होता है, भगवान की पूजा करने वाला, पूजित होने वाले भगवान जिस हेतु पूजा की जा रही है, पूर्ति का स्रोत और जहाँ पूजा की जाती है, सभी लाभान्वित होते हैं। सुनने वाला, कहने वाला, देखने वाला और कार्य करने वाला, जो भगवान की भक्ति में जो भी लगता है, वो सभी लाभान्वित होते हैं। यहाँ तक कि भौतिक संसार के प्रलय के समय भी भक्ति योग की विधि व्यवहृत हो सकती है। कालेन नष्टा प्रलय वाणियम, प्रलय के समय भगवान की पूजा की जाती है क्योंकि वे वेदों की नष्ट होने से रक्षा करते हैं, वे प्रत्येक युग में पूजे जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 12.3.52 में कहा गया है, कृतेय ध्यायते विश्व तेतायाम यजतो मखे द्वापरि परिचर्यायाम कलौतत् हरि कीर्तनम। के कलयुग में भी विष्णु की पूजा की जाती थी, भले ध्यान के द्वारा की जाती थी, तो भी की किसकी जाती थी, भगवान की। त्रेता में यज्ञ के द्वारा पूजा किसकी, भगवान की। द्वापर में परिचर्या के द्वारा पूजा किसकी, भगवान। और कलयुग में संकीर्तन के द्वारा पूजा किसकी, हर युग में केवल भगवान की पूजा की ही संस्तुति की गई है। विष्णु पुराण में यह लिखा गया है कि हानिस्तन महत छिद्रम स मोह सच विभ्रम यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित स हानि तन महत छिद्रम। वह एक क्षण जिसमें आपने भगवान को याद नहीं किया, वो आपकी हानि है। स मोह सच विभ्रमा, जब भगवान को भूल गए, समझो मोहग्रस्त हो गए। यन मुहूर्तम क्षण यापी, छोटा सा मुहूर्त, एक क्षण भी यदि भगवान को चिंतन नहीं किया तो तुम्हारा वह क्षण जो है वो व्यर्थ गया है। यदि एक क्षण के लिए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का स्मरण नहीं किया जाता है तो यह सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे बड़ी विडंबना है। जीवन की समस्त अवस्थाओं में भगवान पूजे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ महाराजा प्रहलाद तथा महाराजा परीक्षित ने अपनी माताओं के गर्भ में भी भगवान की पूजा की थी। ध्रुव महाराज ने केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान की पूजा की थी। महाराज अम्बरीश ने अपनी पूर्ण युवा अवस्था में भगवान की पूजा की थी। और महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी वृद्धायु में अत्यंत विक्षिप्त अवस्था में भी भगवान की पूजा की थी। अजामिल ने मृत्यु के निकट रहते हुए भी भगवान की पूजा की थी। और चित्रकेतु ने स्वर्ग तथा नरक में रहकर भी भगवान की पूजा की थी। नरसिंह पुराण में कहा गया है कि जब नरक में रहने वालों ने भगवान के पवित्र नाम का जप प्रारंभ किया तो वे नरक से स्वर्ग जाने लगे। दुर्वासा मुनि ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है, मुच्छेत यन नाम न्यूदिते नरकोपी केवल भगवान नाम जप से नरक के वासी अपनी अपनी नरक की यातना से मुक्त हो गए। अतः सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को जो उपदेश दिया गया है उसका निष्कर्ष श्रीमद् भागवत 2.1.11 में इस प्रकार दिया गया है, एतन्निर्विद्यमानानां इच्छतां उक्तो भयं योगिनां निप निर्णीतं हरिनामानुकीर्तनम्। हे राजन, अंततः यह तय हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह संसारी हो, योगी हो अथवा सकाम कर्मी हो, वांछित फल की प्राप्ति के लिए निर्भय होकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। योगी नाम नृप निर्णीताम हरिण नामानुकीर्तनम। इसी प्रकार विभिन्न शास्त्रों में अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किया गया है, एक भले ही कोई समस्त वेदों तथा शास्त्रों में निष्वांत हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो वह नर अधम माना जाता है। दो, गरुड़ पुराण, बृहन नारदीय पुराण तथा पद्म पुराण में भी इसी की पुनरावृत्ति की गई है कि जो भगवत भक्ति से रहित है उसे वैदिक ज्ञान तथा तपस्या से क्या लाभ। तीन, हजारों प्रजापतियों की एक भगवत भक्त से तुलना कैसे। चार, सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम 2.4.17 में कहा है कि भगवत भक्ति के बिना सन्यासी, ना ही दयालु, प्रसिद्ध व्यक्ति, महान दार्शनिक, महान तांत्रिक या अन्य कोई भी व्यक्ति वांछित फल नहीं पा सकते। पांच, भले ही कोई स्थान स्वर्ग से भी अधिक महिमामय हो, किंतु यदि वहाँ वैकुंठ के स्वामी या उनके भक्त की महिमा का गान नहीं होता है तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। छह, शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए पांच प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार कर देता है। अतः अंतिम निष्कर्ष यही है कि सर्वत्र तथा सर्वदा भगवान की महिमा का गान होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि उनकी महिमा का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करे, क्योंकि जीवन की परम सिद्धि अवस्था यही है। सकाम कर्म तो भोग्य शरीर तक सीमित है, योग शक्तियों की प्राप्ति तक, योग शुष्क दर्शन दिव्य ज्ञान की उपलब्धि तक, और जहाँ तक दिव्य ज्ञान का संबंध है वह मोक्ष लाभ तक सीमित है। यदि इन सबको संपन्न किया भी जाता है तो इनके मार्ग में त्रुटियों के होने की संभावना रहती है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति को ग्रहण करने की ना तो कोई सीमा है, ना ही नीचे गिरने का कोई भय है। भगवत कृपा से यह विधि स्वतः अंतिम अवस्था को प्राप्त होती है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान आवश्यक है, किंतु उच्चतर अवस्था में ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः उन्नति का सर्वोत्तम तथा निश्चित पथ भक्ति योग ही है। कभी कभी श्रीमद् भागवतम के उपर्युक्त चार श्लोकों के निचोड़ का उपयोग निर्विशेषवादी अपने पक्ष में समर्थन हेतु करता है, किंतु ध्यान देना चाहिए कि इन चारों श्लोकों का वर्णन सर्वप्रथम श्री भगवान ने स्वयं किया था। अतः भगवान के विषय में कोई धारणा न होने से निर्विशेषवादी को उनमें प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः इन श्लोकों के निचोड़ की निर्विशेषवादी चाहे जो भी व्याख्या करे, वह ब्रह्मा से प्राप्त शिष्य परंपरा में दीक्षित व्यक्तियों द्वारा मान्य नहीं होगी, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त श्रुति पुष्टि करती है कि जिसे अपने शैक्षणिक ज्ञान का गर्व होता है उससे उसके समक्ष श्री भगवान कभी भी प्रकट नहीं होते। कठोपनिषद 1.2.23 में श्रुति मंत्र का स्पष्ट कथन है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मे दया न बहुधा श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। यह सारी बात श्री भगवान स्वयं कहते हैं। अतः जिसकी पहुंच भगवान के सगुण रूप तक नहीं है वह श्रीमद् भागवतम के सार को शिष्य परंपरा में किसी भागवत से शिक्षा ग्रहण किए बिना शायद ही समझ सके। तो सार यही है भक्तों, कि केवल भगवत भक्ति से ही हम भगवान को और अपने जीवन को लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए जीवन में, यदि कृष्ण प्राप्ति नहीं होती है, यदि कृष्ण की भक्ति नहीं करते तो सब व्यर्थ है। और कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का सरल साधन है किसी शुद्ध वैष्णव गुरु के शरण कमलों की शरण ग्रहण करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।